मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 6 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का पूरी गर्म जोशी के साथ स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है रोशन कुमार शर्मा जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। तो रोशन आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक छोटी सी सूचना मुझे आपको देनी है और सूचना यह है फ्रेंड्स कि अगर आप YouTube पर एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले प्रोग्राम्स देखते होंगे जो मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं तो दोस्तों शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से आपके लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण है। मैं यहां एक बात आपको बता दूं, देखिए आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आपको उसकी जरूरत है या नहीं है वो बिल्कुल अलग बात है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो स्टूडेंट सिंसियरली सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर ये मायने नहीं रखना चाहिए कि यह मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है ये मेडिसिन मेरी जरूरत है और मुझे ये खानी है चाहे यह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। वहां फिर आप टेस्ट नहीं देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि खासकर एकेडमी जो वीडियो प्रोवाइड कर रही है हम लोग बहुत ही सोच समझकर वीडियो तैयार करते हैं और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि वो स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी हो। अब हो सकता है कि कुछ के लिए वो ज्यादा उपयोगी हो सकता है, कुछ के लिए थोड़ा उपयोगी हो सकता है, लेकिन ऐसे तो होते ही है कि एक बार तो हर स्टूडेंट को कम से कम एक बार तो हर स्टूडेंट को उन्हें सुनना ही चाहिए। तो मित्रों यह एक छोटी सी सूचना ये है कि हम आगे भी वीडियो डालते रहेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे प्रिय पाठक होने के नाते हम लोगों पर विश्वास करने के नाते कि बेहतर होगा कि आप YouTube का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी, आपको पता लगता रहेगा और आप उसे देखते भी रहेंगे। अदरवाइज हम लगातार उन चीजों को उस तरीके से देख समझ नहीं पाते हैं। और जो हमारी यूट्यूब का चैनल है मित्रों वो आप जानते हैं AFEIAS ये चैनल है और इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी सूचना थी। मुख्य विषय के अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं इनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। मित्रों एक जो खबर है जिस पर मैं आपको थोड़े से निर्देश देना चाहूंगा या कह लीजिए कि गाइड करना चाहूंगा, निर्देश तो नहीं कहना चाहिए, मैं गाइड करना चाहूंगा, वह है ओखी चक्रवात को लेकर। मैं ओखी चक्रवात पर आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओखी चक्रवात पर जो समाचार था उस पर बात कर रहा हूं और मैं खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से बात कर रहा हूं। कल की अगर आपने न्यूज सुनी हो, मैं रेडियो न्यूज को लेकर चल रहा हूं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी दिशाएं बताई गई हैं कि ये जो ओखी चक्रवात है ये अरब सागर में उठा और इसके बाद फिर वो उत्तर की ओर बढ़ा, फिर उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व, इस तरह की ढेर सारी दिशाओं का उल्लेख उस न्यूज में किया गया, आपने सुना होगा, तो भ्रमित करने वाली स्थितियां हैं। लेकिन ठीक है, न्यूज तो न्यूज है, उन्होंने अपने पर्पस से उसको दिया है क्योंकि वो न्यूज सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो न्यूज जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनको इसकी व्यवस्थाएं देखनी है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, आपदा प्रबंधन करना है, तो उनके लिए है कि वो समझ सकें कि अच्छा ये यहां पहुंचेगा, यहां यहां चक्रवात आएगा, यहां भारी वर्षा होगी, तो ये उनको दी गई गाइडलाइन है और उसको बड़े आराम से समझ लेंगे, जबकि हम भ्रमित हो जाएंगे, हमको लगेगा जैसे कि हम किसी भूल भुलैया में उलझे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा काम आज कर ही डालिए, मुश्किल से 5 मिनट का आपको वक्त लगेगा, आप एटलस खोलिए, भारत का नक्शा निकालिए, भारत के नक्शे वाला प्रेस निकालिए या फिर नक्शे के सामने खड़े हो जाइए और उस न्यूज को लगा दीजिए। और उस न्यूज में जिस तरीके से भी बातें बताई जा रही हैं, नक्शे में आप उसे लोकेट करते जाइए कि ठीक है अरब सागर में ओखी चक्रवात उठा तो उसे केरल और तमिलनाडु को ही प्रॉब्लम क्यों हुई, दूसरों को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। चलिए फिर आप आगे जाकर के देखिए तो फिर अब आप न्यूज में सुन रहे हैं कि गोवा में प्रॉब्लम हो गई है। फिर आप ये भी दिमाग में सोचिए कि गोवा में शुरू में प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, पहले केरल और तमिलनाडु में प्रॉब्लम होती फिर गोवा में प्रॉब्लम होती है, और गोवा में प्रॉब्लम होने के बाद अब वो महाराष्ट्र में पहुंच गई है, और महाराष्ट्र के बाद हालत यह है कि अब तो गुजरात में भी ओखी पहुंच गया है, और गुजरात में तो जो चुनावी सभाएं अभी हो रही हैं उन तक को स्थग कैंसिल करना पड़ा। आप नक्शे से समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कारण मिल जाएंगे और आपको बकायदे दिशाएं भी मिल जाएंगी। देखिए अगर कोई चक्रवाती वायु पवन केरल से इंडिया के लिए ट्रेवल करेगी तो नक्शे को देखने के बाद आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी दिशा क्या होगी, तो साफ है कि वो उत्तर की तरफ बढ़ेगा, उत्तर दिशा में यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तभी वो होगा। फिर अगर वो उत्तर पूर्व में जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो महाराष्ट्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो समुद्र तट के किनारे 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 ऊपर बढ़ रहा है तो तटीय क्षेत्र कहलाएगा। फिर आप देखिए कि गुजरात वहां से सबसे दूर है तो गुजरात में अब वो पहुंच रहा है, थोड़ी से मध्य प्रदेश में भी इस ओखी के कारण वर्षा की स्थिति बन गई है, बादल छा गए हैं, तो जब आप ये न्यूज सुनेंगे कि उत्तर पूर्व की ओर इसका असर दिखाई दे रहा है तो फिर आप नक्शे में लोकेट कीजिए कि महाराष्ट्र में घुस गया, महाराष्ट्र में घुसा तो ये उत्तर है, अंदर घुस रहा है तो उत्तर पूर्व है, और जब उत्तर पूर्व में घुस गया है तो मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया है, तो जो बॉर्डर है महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का उस हिस्से पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। कुल मिलाकर यह मित्रों कि अगर आप नक्शे का सहारा उस समय ले सकते हैं तो ये जो जटिल चीज आपको सुनाई पड़ रही है आपके लिए बहुत सरल चीज हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है आपको मजा भी खूब आएगा, आप एक बार करके देख लीजिए। तो ये बात मुझे ओखी चक्रवाती तूफान के माध्यम से आपको बतानी थी। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो अयोध्या मंदिर को लेकर के है, इसके बारे में आपने खबरें सुनी है और खबरें आज अखबारों में है, पढ़ी भी है। दूरदर्शन चैनल पर जो न्यूज आ रही थी उसमें बहुत ही संक्षिप्त में इसका छोटा सा इतिहास भी बताया गया था कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई फिर कैसे धीरे धीरे बढ़कर वो अभी तक यहां पहुंची है, और मूलतः इससे जुड़ा हुआ मामला क्या है और इसके बारे में न्यायालय ने किस तरीके के निर्णय दिए हैं, वो बहुत ही संक्षिप्त में था लेकिन बहुत ही प्यारा था, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में कंप्लीट था। ये बड़ी बात होती है कि संक्षिप्त था लेकिन अपने आप में संपूर्ण था। तो दोस्तों उस पर मैं बात करने नहीं जा रहा हूं, उसकी जरूरत मैं नहीं समझता, इसलिए नहीं कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि वक्त कम है और आज अखबारों में काफी कुछ इसके बारे में लिखा गया है तो आप वहां से देख लेंगे, अदरवाइज डीडी न्यूज में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो मैंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। आपको मालूम है कि अभी कल जो हमारे यहां जो विदेश फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे यहां की है, विदेश निर्यात नीति, विदेश व्यापार नीति सॉरी कहना चाहिए, विदेश व्यापार की नीति का मतलब वही है कि आयात और निर्यात जो हम विदेशों से करते हैं, विदेशों से हम कुछ चीजें मंगाते हैं और कुछ चीजें उनको भेजते हैं, उससे संबंधित जो हमारी नीति है उसकी मध्यावधि मिड टर्म रिव्यू किया गया, मध्यावधि समीक्षा की गई और उस समीक्षा में कुछ निर्णय लिए गए। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो ये है कि जो लेबर ओरिएंटेड जो हमारी इंडस्ट्री है, जो श्रम प्रधान इंडस्ट्री है, जिसमें श्रम प्रधान इंडस्ट्री में आते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग, कैसे उसके माध्यम से हम अपने निर्यात को बढ़ाएं, और उसके लिए फिर उन्होंने 2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने की बात कही है, जिस पर लगभग 8,500 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर किए गए हैं, उतना खर्च आएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है दोस्तों कि पिछले 14 महीनों में अक्टूबर, अभी जो अक्टूबर गया है इसमें हमारा जो निर्यात है वो सबसे कम रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा निर्यात इतना कम हुआ है। चलिए हम उस रीजन पर नहीं जाते। तो सरकार के पास ने जब इसको रिव्यू किया तो उसको लगा कि नहीं, जो ऐसे जो इंडस्ट्री हैं उन्हें हमें इंसेंटिव देना चाहिए ताकि विदेशी बाजार में हम टिक सकें, प्रतिस्पर्धा में टिक सकें, और साथ ही साथ नो डाउट कि हमारे जो निर्यातक हैं वो प्रोत्साहित हो सके और लाभ भी कमा सके। क्योंकि अगर आप सस्ती कीमत पर अपनी चीजें बाहर बेचना चाह रहे हैं तो आपको कुछ फायदा भी होना चाहिए। तो वो सरकार ने 2% इंसेंटिव देने की बात कही है। आज अखबारों में वो सारी चीजें हैं, वो आप लोग देख लेंगे। अब आप देखें कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हमको करना क्या पड़ता है। मित्रों, आप 2017 का जनरल स्टडीज का पेपर 3 उठाइए, पेपर 3, राइट। और उस पेपर 3 में एक क्वेश्चन देखिए जो शुरू में ही है, उसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू में ही है। श्रम प्रधान, ध्यान से सुनिएगा, श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्रक की विफलता के कारण बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब जल्दी सुनेंगे तो फिर दिमाग में बातें नहीं बैठेंगी। ध्यान से सुनिए, और अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़िए, यानी कि समझ कर पढ़िए, शाब्दिक रूप से केवल मत पढ़िए और ध्वनि के रूप में ही केवल मत सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। श्रम प्रधान निर्यात, श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान निर्यातों के लिए उपायों को सुझाइए। 150 शब्द इंग्लिश में है फ्रेंड्स, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, सजेस्ट मेजर फॉर मोर लेबर इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट। ये क्वेश्चन है, और मजेदार बात यह है कि ये जो मिड टर्म रिव्यू हो रहा है, इस मिड टर्म रिव्यू में इसी जो क्वेश्चन पूछा गया है का जवाब मौजूद है, इसी का जवाब मौजूद है। अब आप देखिए कि इसकी तैयारी आपको कोई बहुत ही विस्तार में जाकर के नहीं करनी है। अगर आपको जरा सी भी, थोड़े से भी फैक्ट्स मालूम है, आधारभूत फैक्ट्स, तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेबर ओरिएंटेड जो लघु इकाइयां कह रहे हैं या कह रहे हैं कि जिसमें पूंजी कम लगती है वो है क्या। आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं है तो फिर आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इससे पहले जो योजना पत्रिका में हम लोगों ने आर्टिकल प्रोवाइड किए हैं मित्रों, तो आप देखिए कि वो इन्हीं पर है, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, इन्हीं पर वो आर्टिकल्स हैं, वहां आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और ये बहुत सरल प्रश्न है, ये बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है। अब ये बात अलग है कि हमारी तैयारी ही बिल्कुल नहीं है तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, और अगर हम अब पूरी तरह से अपने मन से लिखेंगे तो देखिए गलत तो नहीं होगा, लेकिन जो लिखा जाना चाहिए वो हम नहीं लिख पाएंगे। अपने मन से ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन सही भी वह नहीं होगा। अब आप देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ बहुत ही मैं आपको मूलभूत आंकड़े बताता हूं जो इकोनॉमी की तैयारी के लिए जरूरी होते हैं। ढेर सारे आंकड़ों का जाल आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, ढेर नहीं लगाना है, महत्वपूर्ण आंकड़े। अब जैसे मालूम ही होना चाहिए कि जो जैसे माइक्रो इंडस्ट्री जिसको हम सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, तो सूक्ष्म उद्योग की डेफिनेशन क्या है, उसमें कितनी कैपिटल लगेगी, 25 लाख तक। ऐसे उद्योग जिनमें 25 लाख रुपए तक की पूंजी लगती है, मतलब प्लांट और मशीनरी में जो लगती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी, सिंपल सा फैक्ट है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर लघु उद्योग, जिसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उसकी रेंज क्या है, अब 25 लाख से शुरू होगा 5 करोड़, 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे की जो पूंजी लगेगी तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल लघु उद्योग। और इसके बाद है मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग अब शुरू होगा 5 करोड़ से, 5 करोड़ से 10 करोड़ की लागत वाले उद्योग कहलाएंगे मध्यम उद्योग, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। अब इसमें क्या है, मतलब ये कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं है, बस केवल एक बार पढ़ करके थोड़ा सा ध्यान भर रखना है। तो अब आपको इनकी डेफिनेशन पता लग गई। अब थोड़े से और आंकड़े देखिए, जो स्मॉल जो सेक्टर है स्मॉल इंडस्ट्री जो है फ्रेंड्स, ये लगभग 7,500 तरह की वस्तुएं बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो जितनी भी चीजों का उत्पादन करता है उनका 40% उत्पादन सिर्फ इन इंडस्ट्री से था, 40% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, सोच के देखिए। और हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 30% सिर्फ इससे हो रहा, 30% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। और इससे भी बड़ी बात है कि 95% लोग इसकी जो हमारी जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसमें सिर्फ इसी तरह की यूनिट्स हैं, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और रोजगार के मामले में सोचिए कि ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ लोगों को ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्ट न्यूज में आपने देखा है कि रोजगार पर ध्यान दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इन इंडस्ट्री को महत्व देते हैं तो आप देखिए कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है और रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो लेबर ओरिएंटेड है। जैसे लेबर ओरिएंटेड को समझिए, जैसे रेडीमेड कपड़े, विदेशों में कपड़े बहुत सस्ते हैं, लेकिन अगर वो सिले सिलाए हैं तो विदेशों में बहुत महंगे हो जाएंगे। भारत में सिले हुए कपड़े सस्ते हैं क्योंकि जो सिलाई का काम है वो लेबर कर रहे हैं। लेदर का काम, चमड़े का काम, आभूषण का काम, ज्वेलरी बनाने का काम, कालीन, हाथ से बने हुए कालीन का काम, ये सब के सब लेबर ओरिएंटेड है जिसमें श्रम लगता है। और भारत में श्रम सस्ता है, विदेश में श्रम तो कितना महंगा है आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना महंगा है। तो भारत में अगर श्रम सस्ता है तो विदेशों से मुकाबला करने के लिए भारत के पास एक सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो श्रम प्रधान वस्तुओं के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दे। अब ज्यादा ध्यान देने में क्या हो सकता है, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इंडस्ट्री है इनको रियल में प्रॉब्लम किस तरीके की है। एक जो प्रॉब्लम आई है जो अक्टूबर में सबसे कम हुआ है फ्रेंड्स, आप अखबारों में पढ़ेंगे, मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी इकोनॉमिक टाइम्स का प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि जीएसटी एक प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जीएसटी में एक व्यवस्था ऐसी कि आप पहले टैक्स दे देते हैं और बाद में फिर रिफंड मिलता है, तो इन्होंने टैक्स तो दे दिया लेकिन जीएसटी से जो रिफंड मिलना था वो समय पर नहीं मिला, तो इनके पास पूंजी की कमी हो गई। एक तो ऐसे ये छोटे छोटे उद्योग हैं, इनके पास वैसे ही पूंजी नहीं है, और जो कुछ थोड़ी पूंजी थी वो जीएसटी में फंस गई, तो ये चीजों का उत्पादन ही नहीं कर पाए। जब चीजों का उत्पादन ही नहीं हुआ तो फिर एक्सपोर्ट होगा कैसा। तो कैपिटल इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल इनके पास बहुत ज्यादा कम होती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एफिशिएंट वह इनके पास नहीं है। सच पूछे तो जो लेबर लॉ, जो एफिशिएंट लेबर लॉ होने चाहिए, जो बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल हो, लेबर लॉ को भी आप देखते हैं कि बहुत लगातार प्रॉब्लम चलती रहती है, सही लेबर लॉ नहीं है। और इसी तरह से मित्रों, जो ये लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जब मामला चलता है तो इसको क्लियरेंस होने के लिए ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जो तुरंत काम होने चाहिए, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कस्टम वगैरह के मामले आ जाते हैं, तो वह भी हमारे यहां सही नहीं है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस मामले में हम काफी पीछे चले जाते हैं। तो ये वो हर्डल्स हैं, वो बाधाएं हैं जो इन इंडस्ट्री के विकास में बाधक बन रही हैं। इनको हटा दीजिए, आपने उपाय सुझा दिए, इनको हटाने के उपाय बता दीजिए, खत्म हो गई बात, आपका उत्तर तैयार हो गया। अब आप देखिए कि थोड़ी देर में आप इसे तैयार कर सकते हैं, बेसिक चीजें आपको मालूम हो तो आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने नौजवान साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, वैशाली मधुकर जोशी लातूर महाराष्ट्र से, विनय मौर्य बलिया उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद इरशाद आलम, युवराज सिंह चुरू राजस्थान से, आशु जाट अलवर राजस्थान से, नीलकांत भट्ट, सौरभ पाठक ग्रेटर नोएडा से, नोएडा उत्तर प्रदेश से, और राहुल कुमार पुणे महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।